एक और चौथा वाक्य भी लीजिए, और ये सारे बातिल वाक्यात हैं, बार बार मैं ये दोहरा रही हूँ कहीं आपको गलती ना लग जाए। कहते हैं कि जब शेख अब्दुल कादर जेलानी जहाने फ़ानी से आलम जावदानी में तशरीफ़ ले गए, तो एक बुज़ुर्ग को ख्वाब में बताया, मुनकर नकीर ने जब मुझसे मन रब्बू का यानी तेरा रब कौन है पूछा, तो मैंने कहा, ज़रा सुनिए जुरत की बात है, यानी जब मुझसे पूछा गया कि तेरा रब कौन है, तो मैंने कहा इस्लामी तरीका यह है पहले सलाम और मुसाफ़ा करते हैं। इस पर फरिश्ते शर्मिंदा हो गए और उन्होंने मुसाफ़ा किया। तब शेख अब्दुल कादर जिलानी ने हाथ मजबूती से पकड़ लिए और कहा कि तख्लीक आदम के वक्त तुमने अतजलु फीखा में युफसिदु फीखा, जो फरिश्तों का कलाम था आदम अलैहिस्सलाम के मामले में, कि क्या तू पैदा करता इसे जो ज़मीन में फसाद बरपा करेगा, ये कहकर अपने इल्म को अल्लाह के इल्म से ज़्यादा समझने की गुस्ताखी क्यों की। यानी नऊज़ु बिल्लाह, इस कौल के मुताबिक गौसे पाक जाएँ वो फरिश्ते मुनकर नकीर का हिसाब लेने लग गए। कहाँ मुनकर नकीर, उनका हिसाब लेते। तो कहा ये बताओ तुम लोगों ने ये गुस्ताखी क्यों की और तमाम बनी आदम की तरफ फसाद और खून रेजी की निस्बत क्यों की। तुम मेरे इन सवालों का जवाब दोगे तो छोड़ूंगा वरना नहीं। बुनकर नकीर हक्का बक्का एक दूसरे का मुंह तकने लगे, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर इस दिलावर यकताए मैदाने जबरूत और गौसे बहरे लाहूत, मैं आपको इन मुश्किल लफ्ज़ों का उर्दू बताऊँ ना आप हैरान हो जाए। यानी गौसे पाक जिनको कहते हैं, अव्वल तो गौसे पाक कहने ही नहीं चाहिए, वो तो अल्लाह का सिफत है, लेकिन चलिए अगर लोग किसी वजह से बनाते हैं तो उनके नाम के साथ इतनी खूबियाँ। कहते हैं कि ऐसे लोग के सामने कुव्वत मलाकुती क्या काम आती है, यानी गौसे पाक के सामने फरिश्ते क्या कर सकते हैं। मजबूरन फरिश्तों ने अर्ज़ किया, हजूर ये बात सारे फरिश्तों ने की थी, लिहाजा आप हमें छोड़ दें ताकि बाकी फरिश्तों से पूछ कर जवाब दें। यानी मुनकर नकीर को अपने साथ दूसरे फरिश्तों की फ़िक्र लग गई कि ये जुर्म तो उन्होंने किया था। हज़रत गौस सकलैन, पता है सकलैन क्या है? गौस कहते हैं मदद करने को, गयास, ये गैस बारिश को कहते हैं जो बहुत उम्मीदों से आती है ना, कुरान में भी ये लफ्ज़ आता है। तो गौस सकलैन दोनों दुनिया के, सकलैन दोनों बोझ, यानी जिन्नों और इंसानों और दुनिया और आखरत में सबके मददगार। नऊज़ु बिल्लाह। हज़रत गौसे सकलई ने एक फरिश्ते को छोड़ा और दूसरे को पकड़ रखा, एक को कहा तू तो इधर रह दूसरा जा, ये मुराद है। फरिश्ते ने जाकर सारा हाल बयान किया तो सब फरिश्ते इस सवाल के जवाब से आजिज़ रह गए। तब बारी ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि मेरे महबूब की खिदमत में हाजिर होकर अपनी ख़ता माफ़ कराओ, जब तक वो माफ़ ना करेगा रहाई ना होगी। चुनाचे तमाम फरिश्ते महबूब सुबहानी की खिदमत में हाजिर होकर उज़र ख्वाह हुए। हज़रत समदियत, नऊज़ु बिल्लाह, आपको तो समदियत किसकी सिफत है? अल्लाहुस्समद, यानी अल्लाह ताला की तरफ से भी शिफात का इशारा हुआ। इस वक्त हज़रत गौसे पाक ने जनाब बारी ताला में अर्ज़ की, ए खालिके कुल रब्बे अकबर, अपने रहम व करम से मेरे मुरीदीन को बख्श दे और इनको मुनकर नकीर के सवालों से बरी फरमा दे, तो मैं इन फरिश्तों का कसूर माफ़ करता हूँ। इन्ना लिल्लाह, कि पहले तू मेरे मुरीदों को माफ़ कर फिर मैं तेरे फरिश्ते छोड़ूंगा। फरमाने इलाही पहुंचा, मेरे महबूब मैंने तेरी दुआ कबूल की, फरिश्तों को माफ़ कर दिया। तब जनाब गौसियत माँ अपने फरिश्तों को छोड़ा और आलम मलकूत को चले गए। ये अबस शिर्क से भरी हुई जहालत का पलंदा कहाँ से मैंने आपके सामने रखा है, तो आप बुक का नाम नोट कर लीजिए, मुख्तसरुल मजालिस किताब का नाम है, रियाज अहमद गोहर शाहिर लिखने वाले हैं, सफ़ा नंबर 8 से 10 तक। अब मुझे आप बता सकते हैं कि इसके बाद कुछ और बोलने या सुनने की ज़रूरत है? क्या पता चला इस वाक़े से? पहली बात है कि फरिश्ते औलिया कराम के आगे जवाब दें, फिर फरिश्ते औलिया अल्लाह के सामने आजिज़ हैं, औलिया अल्लाह के सामने अल्लाह ताला भी सिफारशी हैं, और अब्दुल कादर जिलानी के तमाम मुरीद फितने कब्र से महफूज रहेंगे, कौन ना करे इनकी बैत, है ना बातिल। इसलिए लोग नहीं आते गर्मियों में, इसलिए लोगों को चलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोगों को सर्दी अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं जब घर बैठकर चार बुज़ुर्गों की बैत कर लें और जन्नत मिल जाए और कब्र के अजाब से बच जाएं, तो हमें और क्या लेना है। देखिए ये बात इसलिए आपके सामने रखनी ज़रूरी थी, मैंने कभी इन मौजूआत पर बात नहीं छेड़ी जब तक कि आप लोग स्टूडेंट बनकर यहाँ ना बैठे हो, बाहर बातें करने की नहीं, लोग मानेंगे नहीं, लोग कहेंगे वो अच्छा ये देखें फलां की बेइज्जती फलां की, आपकी किताबों के हवाले हैं, इल्मी बहस है, इल्म को सामने रख लीजिए। ये सारा मुकाम तो अल्लाह के नबी के सहाबा तक को नहीं मिला, इसलिए दो वाक़यात सुन लीजिए जो सही वाक़यात हैं। यानी अल्लाह के नबी के दौर में दो बड़े सहाबी फौत हुए, एक थे कबीला औस के सरदार साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु, फौत हुए तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हज़रत साद का सर अपने जानवे मुबारक पर रखा, यानी इधर रखा था, इस पे रखा, और अल्लाह ताला के हजूर दुआ फरमाई, या अल्लाह, साद ने तेरी राह में बड़ी तकलीफ़ उठाई है, तेरे रसूल की तस्दीक की, इस्लाम के हकूक़ अदा किए, या अल्लाह इसकी रुख के साथ वैसा ही मामला फरमा जैसा तो अपने दोस्तों के साथ फरमाता है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात जब हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जुमला नोट कीजिए, अल्लाह के नबी की ज़ुबान है और बुखारी और मुस्लिम के लफ्ज़ हैं, कि साद की मौत पर रहमान का अर्श कांप गया। और जब इनका जनाजा उठाया गया ना तो बड़ा हल्का सा था, लाइट वेटेड था। आपने इरशाद फरमाया कि साद का जनाजा तो फरिश्तों ने उठा रखा है। आपने ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाई और अपने जानिसार सहाबी के लिए मग़फ़रत की दुआ फरमाई। नमाज जनाजा के बाद आपने इरशाद फरमाया, साद के जनाजे में 70,000 फरिश्ते हाजिर हुए और सादिकुल मस्तूक, यानी सब सच्चों के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि साद की रूह के लिए आसमान के सारे दरवाज़े खोल दिए गए, ताकि जिस दरवाज़े से चाहे इसकी रूह ऊपर जा सके। बकी यानी जन्नतुल बकी, जो मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है, उसमें इनको दफन किया गया। हज़रत अबू सईद खुदरी ने कब्र खोदी और फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे इस कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही है। और रसूल रहमत ने अपने दस्ते मुबारक से लाश कब्र में रखी। कब्र पर मट्टी डालने के बाद आप देर तक सुबहान अल्लाह इरशाद फरमाते रहे। साहबे कराम भी आपको देखकर यही कलेमात दोहराने लगे। इसके बाद आपने अल्लाह अकबर फरमाना शुरू किया। साहबा ने भी यही किया। दुआ से फरागत के बाद साहबे कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने तस्बीह और तकबीर क्यों कही? देखिए, साहबा आपको करता देखकर कर लेते थे, सवाल नहीं पूछा, बाद में पूछा। आपने फरमाया, नोट कीजिए ये जुमला, तदफीन के बाद कब्र ने साद को दबा लिया था, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने कब्र को फराख फरमा दिया। और एक मौके पर आपने ये बात भी फरमाई कि अगर कब्र के दबाने से कोई शख्स निजात पा सकता तो वो साद बिन माज होते। आप ये वाक़ ख़ुद भी पढ़ लीजिए, जाकर आपको किताब दे देती हूँ। मुस्तदरक हाकिम की ये रिवायत है, जिल्द नंबर 4, 4981 से 83 तक की हदीस है। अभी से एक हदीस जो सही रिवायत है, इससे क्या पता चलता है? पहली बात, गुनाह मुआफ़ करने के इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है। रसूलुल्लाह ने हज़रत असाद के ईमान की गवाही तो दी, लेकिन मग़फ़रत के लिए दुआ अल्लाह से की। फिर देखिए, आपकी नमाज जनाजा अल्लाह के नबी ने पढ़ाई, 70,000 फरिश्ते नमाज जनाजा में शरीक हुए, आपकी रूह के लिए आसमान के सारे दरवाज़े खोल दिए गए, मैयत को रसूल रहमत अपने हाथों से दस्ते मुबारक से दफन किया, कब्र में उतारा, इसके बावजूद साद को कब्र ने दबाया, तो क्या पता चला कि अल्लाह अपने बंदों के मामलात पर गालिब है। ना अल्लाह के नबी इसको टाल सकते हैं, ना 70,000 फरिश्ते। और जब आपने देखा कि कब्र दबा रही है, तो फिर आपने अल्लाह की हमदो सना, तकदीस और तकबीर कही, तो उस वक्त तक करते रहे जब तक के साद रज़ी अल्लाह अन्हो को कब्र की तकलीफ़ से निजात ना मिल गई। तो क्या पता चला? अब आप इस पर 10 सवाल सोच लेंगे, किसी को भी ना सोचिए। ये पता कर लीजिए कि अल्लाह के हजूर आजजी और इनकसारी के साथ मिन्नत समाजत और दरख्वास्त तो की जा सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती अल्लाह के नबी भी अपनी बात नहीं मनवा सकते। अब ये वाक़या जब सही रिवायात से आते हैं, फिर ही समझ आती है ना। आज हमारी कौम का मिजाज ही इल्मी नहीं, इस बात पे इतना पटंगड़ बना सकता है कोई? देखो देखो, नागा सुना ना बीजा सुना, ना आपने कुरान पढ़ा, ना हदीस पढ़ी, ना सीरत पढ़ी, आपको क्या हक है किसी से बात करने का? तो लिहाजा इल्म हासिल कीजिए, रियल रिसोर्सेज का। आप एक नकली खाना नहीं खाते, एक जाली चीज़ नहीं खरीदते। आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं तो आप 10 दफ़ा सोचते हैं कि ये असली है कि नकली है, लेकिन हम दीन के नाम पे हर बात को लेकर चल पड़ते हैं। और आजकल जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह ही की पनाह कह सकती हूँ, कि किस तरीके से लोग ऐसी ऐसी मन घड़त बातें आगे पेश करते हैं। कभी ऑडियो क्लिप्स में कोई रुलाता है, कोई हंसाता है, सर आँखों पर। बात अगर कुरान सुन्नत में, तो सर आँखों पर। ये साथ का वाक़या हम कभी ना बयान करते अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये बात ना मिल रही होती। तो हमेशा अपने आप को महफूज रखिए, ना बात कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। आपको ज़िम्मा नहीं दिया अल्लाह ने कि लोगों को आपकी बात ज़रूर ही समझ आए, लेकिन बात कीजिए तो हक कीजिए। एक वाक़या और भी हम इसमें ले लेते हैं, और फिर उसके बाद किताब में से हम अपने लिए साथ साथ अमल की बातें लेते रहेंगे। और ये वाक़या है अल्लाह के नबी के एक और सहाबी का, जिनके साथ क्या मामला हुआ, उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाहु अन्हो मक्का से हिजरत करके मदीना आए। जब भाईचारा कायम किया गया, मवाखात कायम की गई, तो उम्मुल आला अंसारिया के घर ठहरे। फौत हुए तो उम्मुल आला ने अल्लाह के नबी की मौजूदगी में कहा कि अबू साहिब, ये उनकी कुनियत थी उस्मान बिन मज़ऊन की, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने मरने के बाद तुझे इज़्ज़त बख्शी। देखिए हम भी अक्सर कहते हैं ना मरहूम, मफ़ऊल, वो शख्स जिस पर रहम हुआ, उन्होंने भी ऐसी को बात कर दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुझे कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह ने उसे इज़्ज़त बख्श दी। तो उम्मे आला कहने लगी अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, फिर अल्लाह और किसको इज़्ज़त देगा, यदि इतना नेक शख्स दुनिया से गया तो इसको इज़्ज़त नहीं मिलनी तो किसको मिलेगी। तो आपने फरमाया बेशक उस्मान को मौत आ गई और अल्लाह की कसम मैं भी इसके लिए अल्लाह से खैर और भलाई की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि क़्यामत के रोज़ मेरा हाल क्या होगा, हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये बुखारी के अल्फाज हैं। तो क्या पता चला कि उस्मान बिन मज़ऊन जो दो दफ़ा हिजरत कर चुके, हबशा भी और मदीना भी, उनको इतनी बड़ी सआदत मिली, इसके बावजूद अल्लाह के नबी उनके बारे में ये जुमले बोल रहे हैं तो मैं और आप क्या हैं। और आप कहते हैं कि जब ये फौत हुए थे ना तो अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा इनकी पेशानी पे बोसा लिया था। ये आपको इसमें सवाल डाल सकते हैं, किस सहाबी की पेशानी पे अल्लाह के नबी ने 3 बार बोसा लिया उनकी फौत होने के बाद, और आपने फरमाया था कि तुम दुनिया से इस तरह रुखसत हुए हो कि तुम्हारा दामन ज़रा बराबर दुनिया से आलूदा ना होने पाया। बेनियाज सहाबी जिनको दुनिया से कुछ नहीं लेना था। तो क्या पता चला इस वाक़े से, कोई नहीं जानता कि अल्लाह के यहाँ किसका क्या मर्तबा है। उम्मीद अच्छी रखिए, बाकी बात अल्लाह पे डाल दें। दूसरी बात है गुनाह बख्शने या ना बख्शने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। और आखिरी बात कि अल्लाह की अजमत किब्रियाई और जलाल के सामने अल्लाह के नबी भी आजिज और बेबस है। बस कुरान सुन्नत पर जुड़े रहिए, आपका मेरा ज़िम्मा ख़त्म। मैं आपके लिए क्यों अपने आप को मुश्किल में डालूं? दूसरों की आखरत या दुनिया बनाते बनाते अपनी आखरत ख़राब नहीं करनी। और ऐसे सारे वाक़यात जो लोगों ने नबियों और वलियों और इस तरह की चीज़ों से मंसूब किए हुए हैं, इसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में परखिए। जो सही बात है वो सर आंखों पर है, और जो सही बात नहीं उसको पीछे कर दीजिए। शिर्क इतनी बड़ी बात है कि इसमें आसमान ज़मीन पर गिर जाए और तबाह व बर्बाद हो जाए कायनात। इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह ताला कहते हैं सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, पाक है तेरा रब इन बातों से जो लोग मुशरिक हैं, जो वो करते हैं। वो जब्बार है, वो अजीज़ है, वो मुतकब्बिर है, उसके सामने किसी की नहीं चलती। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे ऐसे भाई बहन जो किसी भी गलत फहमी की वजह से और इन चीज़ों के ऊपर पढ़कर अपने आप को परेशान करते हैं, अल्लाह ताला उनको बचा के रखे। अब हम चलते हैं बराह रास्त किताब पर। 9 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। इससे पिछली नशिस्त उसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसका खुलासा ले लीजिए। मरते वक्त काफिर के लिए सज़ाएं क्या होंगी, मैयत का कलाम करना या सुनना इसकी क्या हकीकत है, और कब्र का मफहूम क्या है। फिर कब्र की नेमतें हक हैं ये देखा था, और अजाब कब्र हक है। आज हम 10वां टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे पेज नंबर 112 से। अजाब कब्र फ़ी दौल क़ुरान, कब्र का अजाब कुरान की रोशनी में। यहाँ आपको सारी कुरान पाक की आयतें मिलेंगी कि जिधर से आपको कब्र का अजाब समझ आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जिस पे इंशाल्लाह हम बात कर लेंगे एक्स्ट्रा भी, कि कहाँ लिखा है जी कि कब्र का अजाब है। अच्छा लोग कहते हैं हदीस में, कहते नहीं हदीस को हम नहीं मानते, नऊज़ुबिल्ला। जो हदीस को नहीं मानता फिर उसको किसी और चीज़ को भी मानने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम कुरान पाक की वो आयतें नोट करेंगे जिनमें कब्र के अजाब का तذکرہ मौजूद है। अहम टॉपिक है, बहुत अहम है, और अल्लाह ना करे हमारे इर्द गिर्द रहने वालों में कुछ हों। और याद रखिए बहुत इंटेलेक्चुअल लोग नहीं मानते, गरीब तो बेचारे रोते धोते हैं और कम पढ़े लिखे खुद भी रोते दूसरों को रुलाते, लेकिन बड़े बड़े एंकर स्क्रीनों पे आकर लोगों को कहते हैं, कह रहे छोड़िए कहाँ है अजाब कब्र और ये वो। तो आइए अल्लाह से दुआ मांग कर इसको शुरू करते हैं। अजाब कब्र पेज नंबर 112 टॉपिक है, मेरे साथ दोहराइए, अजाबुल कब्री फ़ी दौल क़ुरान। अजाब कब्र कुरान मजीद की रोशनी में, मसला नंबर 61 से शुरू होता है ये टॉपिक। समंदर में गर्क होने के बाद आले फिरौन को रोज़ाना सुबह शाम आग का अजाब दिया जाता है, इसकी दलील सूरत मोमिन आयत 45-46 वहा कभी आल फिरऊन सूउल अज़ाब अन्नारु युरदून अलैहा गुदुवं व अशीयम व यौम तक़ूमु सात अदखिलू आल फिरऊन अशद्दल अज़ाब। देखिए कुरान का तर्जमा पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि हम इन आयतों को पढ़ते ही इनकी असल में पहुंच जाते हैं। क्या है इसका मफहूम? आले फिरौन बदतरीन अजाब के फेर में आ गए, जहन्नुम की आग के सामने वह सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जब क़्यामत की घड़ी आएगी तो हुक्म होगा कि आले फिरौन को शदीद तरीन अजाब में दाखिल कर दो। अब देखिए, अब सूरत मोमिन की आयत है, आप जाकर खोलिए, इसका किसी भी किताब में से तर्जमा पढ़िए, तफसीर देखिए, आपको समझ आएगा। और जब फिरौन की कौम या आले फिरौन के लिए अजाब कब्र की बात है तो किसी और के लिए फिर क्यों नहीं हो सकती? दूसरी दलील लीजिए, मौत के वक्त से ही काफिरों को अजाब शुरू हो जाता है। इसकी दलील सूरत अलनाम 93 वलौ तराइज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकत बासितु अयदीहिम अख़रिजू अन्फुसकुम अल यौम तुज़ज़ौना अज़ाब अल हूनि बिमा कुंतुम तकूलून अलल्लाहि गैर अल हक वकुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। काश तुम ज़ालिमों को इस हालत में देखो जब वो जानकुनी की तकलीफ़ में मुबतला होते हैं, फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं लाओ निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें इन बातों की पादाश में यानी इसके जुर्म में रुस्वा को नजाब दिया जाएगा जो तुम नाहक अल्लाह ताला के बारे में कहा करते थे और अल्लाह ताला की आयात के मुकाबले में तकब्बुर किया करते थे। क्या पता चला, इधर जान निकली और उधर अजाब शुरू। तीसरी दलील, काफिरों की रुख कब्ज़ करते ही फरिश्ते इन्हें जहन्नुम के अजाब में झोंक देते हैं। सूरत नहल आयत 20-28 अल्लज़ीन ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम फ़ल्क़वुस्सलम मा कुन्ना नअमलु मिन सुइन बला इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा कुंतुम तअमलून फ़द्खुलु अब्वाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा फ़लबिसा मस्वल मुतकब्बिरीन। अपनी जानों पर जुल्म करने वाले काफिर जब मौत के वक्त फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार होते हैं तो फौरन सरकशी से बाज आ जाते हैं और कहते हैं हम तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे। फरिश्ते जवाब देते हैं कैसे नहीं कर रहे थे, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से खूब वाकिफ है, अब जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए, जहन्नुम यकीनन बहुत ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों के लिए। तो आप देख लीजिए, कोई डिनाई कर सकता है कुरान की नायतों को? कोई इनकार कर सकता है इसका? नहीं कर सकता। फिर अगली दलील है सूरत अल अनफाल आयत 50 काफिरों की रुख कब्ज़ करते ही फरिश्ते इन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वलौ तराइज़ यतवफ़ल लसीन कफ़रुल मलाइकतु यद्रिबून वुजूहहुम वअदबारहुम वज़ूक़ु अज़ाबल हरीक। काश तुम देखते जब फरिश्ते मैदान बदर में काफिरों की रूहें कब्ज़ कर रहे थे, वो इनके चेहरों और कुल्हों पर ज़रबें लगाते जाते थे और कहते जाते थे लो अब जलने की सज़ा का मज़ा चखो। अनफाल 50 है ये। और सूरत मोहम्मद 27 फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यद्रिबूना वुजूहहुम वअदबारहुम। बस क्या हाल होगा काफिरों का जिस वक्त फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज़ करेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर थप्पड़ मारेंगे। कौम नूह को डूबते ही आग में पेश कर दिया गया। सूरत नूह 25 मिम्मा खतियातिहिम उग्रिकु फउदखिलु नारा फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। कौम नूह के लोग अपने गुनाहों के जुर्म में गर्क किए गए और आग में दाखिल कर दिए गए और फिर उन्होंने अल्लाह से बचाने के लिए किसी को अपना मददगार न पाया। क्या आप और मैं इन आयतों को पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि कुरान पाक में कहाँ लिखा है कब्र का अज़ाब है? कोई इनकार की गुंजाइश है? कतन नहीं है। इन सारी आयतों से क्या पता चला? कब्र का अज़ाब होगा। देखिए, चौथा दिन हो गया हमें कब्र के अज़ाब की बातें करते, क्या अभी भी यकीन नहीं आता? हर एक को होगा कि नहीं होगा ये बात नहीं हो रही, किसी एक को होगा ना? हो तो सकता है ना। जैसे नेक को जज़ा मिलेगी तो ऐसे बद को सज़ा भी तो मिलेगी। तो क्या सीखा हमने इस टॉपिक से कि कब्र का अज़ाब बरहक है? इसका इनकार करना कुरान और सुन्नत के एक बहुत बड़े हक का और एक सच का इनकार करना है। अगला टॉपिक देखिए, पेज नंबर 114 शिद्दतु अज़ाबिल क़ब्री, अज़ाब कब्र की शिद्दत। قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ مٹی تر ہو گئی۔ عن البرائے رضی اللہ عنہ قال کن نما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازتن فجلس علی شفیر القبری فبقا حت بلسرا ثم قال، آپ بھی دہرائیے، یا اخوانی لمثل ہذا فاعدوا، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت برا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے حتیٰ کہ مٹی آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرے بھائیو اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک ایسے استاد تھے جو موقع دیکھ کر بات کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ لوہا نرم دیکھ کر چوٹ مارنا۔ دیکھیے قبرستان میں کھڑے، قبر کا انتظار ہو رہا ہے، دل نرم ہے، میت پاس ہے، قبر کے کھدنے کا انتظار ہے، پہلے آپ خود روئے، آپ کی آنکھیں گیلی ہوئیں، مٹی بھی نیچے کھلی ہو گئی، اور پھر صرف ایک جملہ بولا یا اخوانی لمثل ہذا فاعدوا، کتنا اثر ہوگا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بک پڑھتے ہیں یا نور اللہ نور میں بحثیت معلم، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ استاد وہ ہوتا ہے جو پہلے کریٹ کرتا ہے، ماحول بناتا ہے، پھر بات کرتا ہے۔ پھر قبروں میں لوگ فتنہ دجال کی طرح سمائے جائیں گے۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولقد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور مثل او قریب من فتنہ الدجال لا ادری ایتہما قالت اسماء، رواہ البخاری۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ میں، یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت اسماء نے کون سا لفظ استعمال کیا، یعنی فتنہ دجال کی طرح یا فتنہ دجال کے قریب۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ دیکھیں آج کی ہماری دعا بھی دجال سے متعلق تھی نا، تو قبروں میں فتنہ دجال کی طرح کی آزمائشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستعیذ من عذاب القبر وفتنة الدجال وقال، دہرائیے گا، انکم تفتنون فی قبورکم، رواح النسائی۔ یا آج ہماری دعا جو تھی اس میں بھی یہی حدیث تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر اور فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ ایک اور دعا ہے آپ کے سامنے، نوٹ کیجئے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دہرائیے گا، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر، رواہ النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یا اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، جانتے ہیں نا یہ تین بڑے بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل تو وہی لے کر آتے تھے، بچے کی روح بھی ڈالتے ہیں ماں کے رحم میں، اسی طرح میکائیل جو ہیں بارش کے فرشتے ہیں، اور اسرافیل کے ذمہ سور پھونکنے کا کام ہے، تو فرشتوں کی بھی ڈیوٹیز اسائنڈ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈیوٹیز کی کتنی اہمیت ہے۔ کیا کہتے تھے، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ کی گرمی سے اور عذاب قبر سے۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ کیا تھوڑی سی گرمی، وہ بھی کوئی نہیں، اس نے آج پریشان کیا لوگوں کو، کیا بنے گا جہنم کی گرمی میں اور اس وقت کیا ہوگا۔ دعا کیجیے اور آج بھی دعا کرتے ہیں اللہ گرمی کا زور توڑ دے۔ دنیا میں جہاں جہاں گرمی ہے، اور آپ کو تو یہ گرمی کیسے آتی ہے، جہنم سانس باہر چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی آتی ہے، اور جب وہ سانس اندر لیتی ہے تو سردی آتی ہے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اگر لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو قبروں میں مردے دفنانا چھوڑ دیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے یہ حدیث یہاں بھی بول دی ابھی میرے ساتھ، اور اس کو گھر جا کر بھی کم از کم تین دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، دہرائیے گا، لولا اللہ تدافنو لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِيَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنوا دے. اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی یہ بھی ایک کرم ہے اللہ کا کہ اس نے نہیں سنوائی، ورنہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑتے. اللہ ہوگا، کبھی آگ میں کسی زندہ کو جلائیں تو اس کی چیخیں آئیں گی نا، تو کبھی حوصلہ پڑے گا کسی زندہ کو آگ میں ڈال دیں؟ انسان کا تو حوصلہ ہی بہت تھوڑا ہے. اگر لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو ہنسیں کم روئیں زیادہ، عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بھول جائیں اور بستیاں چھوڑ کر میدانوں اور جنگلوں میں جا بسیں. دیکھیے اللہ نے قبر کو ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھا، یہ بھی کیا جا سکتا تھا نا، ٹرانسپیرنٹ باکس میں ڈال کر میتیں اپنے گھروں کے باہر رکھ لو، آتے جاتے دیکھو ان کی کیا حالت ہو رہی ہے، تو پھر تو دنیا میں لذت ہی ساری ختم ہو جاتی. دلیل دیکھیے گا، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ان السماء اطت وحق لها ان تعط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك وادي جبهته ساجدا لله واللہ لو تعلمون ما اعلمو لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات ولخرجتم الی السودات تجأرون الی اللہ. قال ابو ذر رضی اللہ عنہ واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تؤذد. رواہ ابن ماجہ. یعنی صحابہ ایسی باتوں کو سن کر کتنا ڈر جاتے تھے. سنیے گا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں چار انگلی جگہ، یعنی تقریباً کتنی بنتی ہے، 3 انچ، ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے سجدہ نہ کر رہا ہو. اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو ہنستے کم اور روتے زیادہ. سب پارٹیاں ختم ہو جاتی، سارے فن فرولک سب ختم، ساری مہندیاں اپٹن ناچ گانے سارے کانسرٹس ختم ہو جاتے اگر لوگوں کو قبروں کی حالت معلوم ہوتی. بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے. حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. کیا مطلب ہے؟ کہ میرا حساب نہ ہوتا، میں قبر میں نہ ڈالا جاتا. قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والی اور کوئی جگہ نہیں. عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دہرائیے گا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منه. رواہ ترمذی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی. اسے ترمذی نے روایت کیا. تیاری کی ضرورت ہے، اصل میں یہ ڈر عمل کی طرف مائل کر دے، یہ ضرورت ہے. چلیے اگلا ٹاپک بھی بہت کروشیل ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیج 117، تو جب الکبائر عذاب القبری. دہرائیے، کبیرہ گناہوں پر عذاب قبر ہوتا ہے. ذرا سا رکیے، کبیرہ گناہ کون سے؟ امام زاہبی نے ایک پوری لسٹ تیار کی ہے الکبائر کے نام پہ، ان کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، الکبائر امام زاہمی کی کتاب ہے، کھول کے پڑھ لیجئے. کچھ کبائر: شرک، والدین کی نافرمانی، سود، قتل اولاد، جادو ٹونا اور شراب کباب. یہ 4-6 موٹی ہی لے لیں، لسٹ اس سے بھی لمبی ہے، طہارت کا خیال نہ رکھنا وغیرہ. تو یہ دیکھیے کہ ان پہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے پر عذاب قبر کی خبر دی ہے. غیبت کرنے والوں کو بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین فقال, دہرائیے گا, انہما لیعذبانی وما یعذبانی فی کبیر ثم قال بلا اما احدہما فکان یسعى بالنمیمۃ واما الاخر فکان لا یستطیر من بولہ. رواہ البخاری. یہ حدیث آپ نے شیئر کرنی ہے اپنی دوستوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ینگ بچے اسپیشلی جو ارلی ٹین ایجز ہوتے ہیں 10-12 کے قریب, ان کو خاص طور پہ یہ حدیث بھی آپ نے سنانی ہے. کیوں؟ آئیے ترجمے سے دیکھیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے, آپ نے فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں, یعنی جس کو ہم کو بڑا نہیں سمجھتے, یہ مراد ہے. پھر فرمایا ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا. اللہ اکبر, کیا یہ چیزیں عام ہیں؟ نمیمہ, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, چغل خوریاں کرنا کس کی عادت ہوتی ہے عموماً؟ گھروں میں, گھریلو معاملات میں ایک کا گھر خراب کرتے ہوئے دوسرے کے ساتھ, اور پیشاب سے احتیاط نہ کرنا, اس کی آج کے دور کی کیا صورت ہے؟ سنجا نہیں کرتے, پانی نہیں ہے باہر, غیر مسلم ملکوں میں ہے. بچوں کو اس کا عادی کیجئے. یاد رکھیے, طہارت کے بغیر تو نماز بھی قبول نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے بڑی بات نہ ہونے کا کہ کوئی مشکل یا ناقابل عمل بات نہیں, بلکہ ایسی چیز ہے جس سے بچنا بہت آسان ہے. تو اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے اس حدیث کو تھنگس ٹو ڈو بنائیے اور اس پہ احتیاط کرنی ہے. اپنی فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کر شیئر کیجئے, ایکٹیویٹی کر لیں. چلیں, ہم میں سے کوئی بھی اگر کسی دوسرے کا ذکر اس طرح کر رہی ہوگی کہ اس میں چغل خوری کا انداز ہو, تو ہم یہ اشارہ دے دیں گے. کوڈ ورڈ رکھ لیجئے, بات بدل دینا, بیوقوف بن جانا آگے سے. دیکھیے, فرینڈ شپ کے حلقے میں اس کو توڑیں گے تو ٹوٹے گا, ادروائز نہیں. کیونکہ اکثر گوسپ اور گپ شپ اور ہلا گلا کے نام پہ یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ پھر ہمارا مزاج بگڑا کہ اسٹیج ڈرامہ, سوشل میڈیا پھکڑ بازی ہے. اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس, اتنا یہ بدذوق ہیں آپ. آپ جا کر وہاں مذاق کرتے ہیں ساس بہو کے رشتے کا, شوہر بیوی کے اور چار بیویوں کے اور حوروں کی باتیں کرتے ہیں. ایسا مزاج تو ایک مومن کا نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. تھوڑی دیر کا چسکا اور نام اعمال میں ہمیشہ کی خرابی باقی رہ گئی تو کیا بنے گا.